السلام عليكم ورحمة الله. آواز آ رہی ہے سب کو آن لائن کلاسز میں؟ آپ کو آ رہی ہے آن سائٹ کلاس میں؟ کیا اچھا ہے چلیے کلاس شروع کرتے ہیں.
ریکارڈنگ ان پروگریس.
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلی کلاس میں کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ اور اچھا آخری بات بالکل لاسٹ ٹاپک جس پر ہم تھے وہ یہ تھا کہ نبیوں سے جو بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور سارے نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی, تو وہ جو نبی تھے وہ کس فارم میں تھے, فارم کس شکل میں تھے؟ کیا وہ ان کی روحیں تھیں, اسپرٹس, خالی روحیں, یا وہ ان کے جسم تھے, وہ جسم کے ساتھ آئے تھے یا صرف ان کی روحیں آئی؟ آپ بتا رہے ہیں جواب, روحیں آئی تھیں. اچھا تو یہ ڈسکشن چل رہی اور اس ڈسکشن میں پھر ہم تھوڑا سا ایز یوزول ٹینجنٹ میں نکل گئے تھے. بھائی ٹینجنٹ کہتے ہیں ذرا سائڈ میں نکل جانا, ٹھیک ہے؟ وہ کیا نکل گئے تھے کہ جو نبی علیہ السلام نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا؟ یہ ڈسکشن شروع ہو گئی تھی کہ جو انبیاء کو جب دفن کیا جاتا ہے قبر کے اندر تو ان کی باڈیز جو ہیں وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے؟ وہ بالکل انٹیکٹ رہتی ہیں, بالکل صحیح سلامت رہتی ہیں. اور پھر ہم نے آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ صرف انبیاء کی نہیں بلکہ اولیاء کی بھی, جو اللہ تعالیٰ کے فرینڈز ہوتے ہیں, بہت نیک لوگ ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کر لیتے ہیں اگر غلطی سے کبھی تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں, تو وہ اولیاء کرام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, متقی لوگ. تو ان کی بھی جب باڈیز دفن کی جاتی ہیں نا تو ان کی باڈیز بھی پھر ڈیکمپوز نہیں ہوتی, یعنی جو بیکٹیریا آپ کی باڈی کے اندر ہوتے ہیں یا جو انسیکٹس جو باڈی کے باہر زمین میں ہوتے ہیں, نہ انسیکٹس باڈی کو کھاتے ہیں نہ اندر کا بیکٹیریا باڈی کو کھاتا ہے, بلکہ باڈیز بالکل انٹیکٹ رہتی ہیں, بالکل صحیح سلامت. آپ 1000 ایئرس کے بعد بھی اگر قبر کو کھول کے دیکھیں نا تو اندر آپ کو ایگزیکٹلی ویسی باڈی نظر آئے, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات لوگوں نے خود دیکھے ہیں, کتابوں کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں, ایون آج بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو وٹنس کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے قبر کھولنی پڑ گئی یا بارش ہوئی, بہت زیادہ بارش ہوتی ہے نا جب, تو قبر کے اوپر جو انہوں نے سلیب ایک رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ سلیب ٹوٹ جاتا ہے کبھی, ٹھیک ہے, اور ٹوٹنے کے بعد نیچے کھل جاتا ہے, تو پھر لوگ دیکھتے ہیں اچھا ان کا تو بالکل سب کچھ, کپڑا بھی بالکل وائٹ, یعنی کپڑا بھی اللہ تعالیٰ گندا نہیں ہونے دیتے, سفید کپڑا رہتا ہے, ٹھیک ہے. کفن میلا نہیں ہوتا, زمن میلا نہیں ہوتا, کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کیا ہوں, زمن میلا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ باڈیز کو بھی پرزرو کرتے ہیں اور ان باڈیز کے ساتھ جو کپڑا لگ جاتا ہے نا, یہ کلوتھ, سمپل فیبرک, اللہ تعالیٰ اس فیبرک کو بھی محفوظ رکھتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں اللہ والوں کی کیا بات ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ جو چیز لگ جاتی ہے, جو چیز لگ جاتی ہے وہ پرزرو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اولیاء کے ساتھ لگا دے, ہم بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں, ہے نا. وہ کتا تھا نا, ایک اصحاب کہف کا کتا تھا, وہ کتا اولیاء اللہ کے ساتھ لگ گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا بھی قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا, اصحاب کہف کا جو کتا تھا, ٹھیک ہے. حالانکہ کتے کو تو لوگ ویسٹرن سولائزیشن کی بات نہیں کر رہا, ہمارے تو کتے کو ذرا पत्थर मारते हैं, दूर करते हैं। तो ये बात चल रही थी। तो उलमा ने ना फिर दोनों बातें कही हैं। कुछ उलमा ने कहा कि ये जो अंबिया थे ना, ये अपनी फिजिकल बॉडीज के साथ वहां पहुंच गए थे, यानी अल्लाह ताला ने किसी तरह से फरिश्तों को भेज भेज करके उन सबको उठा करके और कब्रों से निकाल निकाल करके सबको फिजिकल बॉडीज के साथ वहां पहुंचा दिया था। इट्स क्वाइट पॉसिबल, कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह ताला के लिए। और दूसरे उलमा ने कहा कि नहीं, फिजिकल बॉडीज के जरिए से नहीं पहुंचाया था, बल्कि वो उनकी रूहें ही थी, लेकिन उनकी रूहों को उस वक्त एक फिजिकल फॉर्म मिल गई थी, तो रूहों को पहुंचा दिया था अल्लाह ताला ने बैतुल मुकद्दस के अंदर। ठीक है, तो ये डिस्कशन हमारी चल रही थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के ऊपर। बेसिकली हमारी ओवरऑल डिस्कशन क्या चल रही है इस वक्त, कि मेराज का जो सफर था, ठीक है, इस सफर में ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वाइज राइट, वाई वाई वाई। पहले हमने हाउ पढ़ लिया, व्हाट पढ़ लिया, कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, ठीक है ना, हाउ इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं व्हाई इट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, ठीक है ना, उनसे क्यों मुलाकात हुई, इनसे क्यों मुलाकात हुई, इनसे क्यों मुलाकात हुई, ये क्यों हुआ। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट इस वाई की डिस्कशन में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जब नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास पहुंचे, फिर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को एक तोहफा दिया, गिफ्ट, राइट। जब आप किसी बड़े से मिलने के लिए जाते हैं ना, तो आपको किसी गिफ्ट के साथ वापस करते हैं। वो गिफ्ट जो होता है वो इतना बड़ा गिफ्ट होता है, जितना वो बड़ा होता है उतना ही बड़ा गिफ्ट देता है। किसी बच्चे के पास मिलने जाएंगे तो आपको छोटी सी कोई कैंडी दे देगा, राइट। किसी आप बादशाह सलामत के पास मिलने जाएंगे, वो अगर आपको कैंडी पकड़ा दें चलो जी आप मुझसे मिलना आए थे, ने थोड़ी सी चॉकलेट लेकर के वापस चले जाए, ये बादशाह सलामत है, ये मुझे चॉकलेट लेके वापस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा था मैं किसी बच्चे से ही मिलकर के आ जाता, राइट, कैंडी लेनी थी अगर। तो भाई अल्लाह ताला के पास मिलने गए थे, तो अल्लाह ताला ने क्या चीज दी, नमाज। हम समझते हैं नमाज क्या मुसीबत पढ़नी पड़ती है, जरूरत है, लेकिन अल्लाह ताला की दी हुई का दिया हुआ ये तोहफा है, तो इससे बड़ी चीज तो कोई हो नहीं सकती ना हमारे लिए। कि हर ईमान वाले के लिए जो नमाज है ना, ये मेराज है, यानी दिस इज व्हेन ही गेट्स टू मीट हिज लॉर्ड, हिज विजिट्स एंड टॉक्स टू हिज लॉर्ड, है ना, अल्लाह ताला से बात करते हैं मेराज में। तो खैर नमाज मिल गई, फिर नमाज लेकर के नबी अलैहि सलाम वापस नीचे आए ना, 50 नमाज है, ठीक है। तो नीचे आए तो सबसे पहले फिर जो आसमान मिला वो कौन सा था, सेवन, सातवां आसमान। सातवें आसमान पे कौन थे, इब्राहिम अलैहि सलाम, ठीक है। अच्छा, इब्राहिम अलैहि सलाम चुप, ठीक है, अभी 550 नमाजें इनको मिली हैं, ऐलान तो हो जाता है, ये नहीं है कि किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। आसमानों में एक अजीब बात है, ऐलान होते हैं, अनाउंसमेंट्स होती है, जैसे ये है ना मस्जिद के अंदर हर वक्त अनाउंसमेंट होती रहती है। हमारे जब हम बहुत छोटे थे तो जो मोहल्ले में मस्जिदें होती थी ना, उनके ऊपर हर वक्त लाउड स्पीकर के ऊपर कोई अनाउंसमेंट होती रहती थी, ठीक है। पाकिस्तान में, इंडिया में भी होता होगा शायद, आप लोगों ने देखा हो, हर वक्त मस्जिदों में कोई ना कोई अनाउंसमेंट होती रहती। यूजुअली अनाउंसमेंट क्या होती थी, एक बच्चा जो अपनी उम्र 4 साल बताता है और गंदमी रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ है, वो मस्जिद में आ गया है, तो जिसका बच्चा हो आकर के ले जाए, ठीक है। बच्चे हर रोज गुम होते रहते थे, तो जिसको बच्चा मिलता था ना वो गुम हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह पुराने जमाने में इतने किडनैपर्स नहीं होते थे, बल्कि वो क्या करते थे, जिसको भी कोई बच्चा मिलता था ऐसे ही अकेला खड़ा हुआ रोता हुआ, तो वो उठा करके ना उसको मस्जिद में पका, ठीक है। और फिर मस्जिद के अंदर फौरन ऐलान शुरू हो जाता था, पूरे मोहल्ले में ऐलान हो रहा है, एक बच्चा हमारे मस्जिद में आ गया है, वो रो रहा है, उसके माँ बाप कौन है, तो जिसका भी बच्चा वो आकर के ले जाए, ठीक है। तो हर वक्त अनाउंसमेंट होती रहती थी। तो ऐसा लगता है, आई एम नॉट 100% श्योरिटी के साथ नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आसमानों में भी ना हर वक्त अनाउंसमेंट होती रहती, ठीक है। अच्छा ये हो गया है, ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना, फलाना काम हो गया, नबी आ गया, ये हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि क्या होगी, राइट, कि भाई 50 नमाजें लेकर के अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम नीचे आए हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ठीक है। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम जो है वो छठे आसमान पे पहुंचे, जब छठे आसमान पे पहुंचे तो वहां पर कौन थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो चुप नहीं रहते, अभी कहाँ से आ रहे हैं, मैं तो मुलाकात करके आ रहा हूँ, क्या लेकर के आ रहे हैं जरा हमें भी बताएं, ठीक है। तो आपसे सलम ने बताया कि जी मैं तो 50 नमाजों का तोहफा लेकर के आ रहा हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 50 नमाजें तो ये तो आप आपकी उम्मत नहीं कर सकती, आप तो कर लेंगे, आपकी उम्मत नहीं कर सकेगी, मेरी उम्मत को तो दो नमाजें फर्ज हुई, वो नहीं कर सकती थी, इतनी मैं उनको समझाता रहता था, वो दो नमाजें नहीं पढ़ते थे। तो इसके ऊपर ना अब हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, वाई है ना, वाई। तो वाई डिड इब्राहिम अलैहिस्सलाम नॉट से एनीथिंग एंड वाई डिड मूसा अलैहिस्सलाम सेड ऑल दीस थिंग्स, ठीक है ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी बातें क्यों करी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई बात क्यों नहीं करी, उन्होंने ये बात, उनको क्या नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की फिक्र नहीं थी, है ना, वो भी तो मिल्लत इब्राहिमी है ना, हम भी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिक्र नहीं थी हमारी, मूसा अलैहिस्सलाम को फिक्र थी, तो ऐसा क्यों आप कुछ बताना चाह रहे हैं, उनके ऊपर नमाजें फर्ज नहीं हैं, नहीं फर्ज तो खैर हुई है, नबी के ऊपर कुछ ना कुछ नमाजें होती हैं, और कोई जवाब, उलमा ने इसका एक जवाब लिखा है जो कि जरा मुश्किल है आप लोगों के लिए बताना, ठीक है, क्योंकि वो है जरा सा टेक्निकल सा जवाब, तो उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कोई और जवाब आपके जहन में आ रहा हो, अजीब बात कि एक जवाब अभी मेरे जहन में भी आया जो कि पहले नहीं आया, ठीक है, और किताब में भी नहीं लिखा हुआ। क्या ऊपर ज्यादा नमाजें फर्ज हुई, नहीं ये तो हमें पता नहीं है कि ज्यादा हुई थी कम हुई थी, तो इस वजह से इसको तो हम बेस नहीं बना सकते। कोई ऑनलाइन क्लासेस में से बताएगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना कुछ कहा क्यों, एक जवाब जो हमारे जहन में अभी आया है ना, जो किताब में नहीं है, वो पहले बता देते हैं, वो जरा ऐसे हमारे जैसा जवाब है, वो क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो खलीलुल्लाह थे, अल्लाह के दोस्त थे, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम क्या थे, मूसा अलैहिस्सलाम क्या थे, कलीमुल्लाह, ठीक है, बात करने वाले, ठीक है ना, कलाम करने वाले, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ना एक और मजे की बात ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, ठीक है, कोई दूसरा नबी कलीमुल्लाह नहीं बना, राइट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कलाम नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम को कलाम नहीं, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, इतने सारे बड़े बड़े अंबिया, ठीक है ना, किसी को अल्लाह ताला ने अपना कलीम नहीं बनाया, ठीक है। उनकी शख्सियत खामोश शख्सियत थी। अच्छा, ठीक है, वही बात हम आपको कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की खासियत क्या है कि वो बातें करते थे, है ना, कलीमुल्लाह, अल्लाह ताला से बातें भी कर रहे हैं और दूसरों से भी बातें कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम वांटेड टू सी द आईज ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु अल्लाह ताला। हाँ, ये बात तो हम कर चुके हैं जब हम आपको ये सारे वाकयात बता रहे थे, कि उनको शौक था कि नबी अलैहिस्सलाम को बार बार देखें, ठीक है, लेकिन अब हम और रीजंस, बिकॉज मूसा अलैहिस्सलाम वांटेड टू टॉक मोर टू नबी अलैहिस्सलाम, टॉक मोर टू नबी अलैहिस्सलाम की रीजन तो नहीं किसी ने लिखी है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से तजुर्बा किया था। हाँ, वो तो उन्होंने बयान भी कर दिया ना अपना तजुर्बा कि जी मेरी उम्मत नहीं कर सकी, आपकी उम्मत कैसे करेगी। आर द प्रॉफिट्स एबल टू टॉक टू अल्लाह ताला इन द सेवन हेवंस, वी डोंट नो, ठीक है, कि अल्लाह ताला की बातचीत प्रॉफिट्स के साथ सेवन हेवंस के अंदर होती है कि नहीं। अगर किसी को पता हो, कोई हदीस से पता हो, फिर आप बता सकते हैं। अच्छा, तो हम आपको बता रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम की स्पेशलिटी क्या है कि वो कलीम है, बात करने वाले हैं, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है, कि वो बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, जैसे दाऊद भाई ने भी कहा। अच्छा, मैं एक और बात आपको कहने वाला था, वो ये कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पसंद किया कि वो अल्लाह ताला से कलाम करें दुनिया में, ठीक है ना, लेकिन एक और बड़ी मजे की बात अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर दी, वो क्या थी, जो कि किसी दूसरे नबी के साथ नहीं करी, वो क्या थी, जिसका ताल्लुक कलाम के साथ, बोलने के साथ, ठीक है, जी माशाल्लाह, ये जवाब उन्होंने जबरदस्त दिया है। He stammered, while he spoke. Stuttered भी कहते हैं, हकलाना, ठीक है? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हकलाने वाला बनाया. हकलाना क्या होता है? स्टैमर्ड भी कहते हैं. He couldn't speak properly. वो सही से बात ही नहीं कर सकते. अटक अटक के बोलना, हकलाना उसको कहते हैं, ठीक है ना? सही तरीके से बात नहीं कर सकते. बाकी सारे नबी बहुत अच्छे से बात कर सकते थे, किसी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं. हकलाने की प्रॉब्लम किसी नबी के साथ नहीं थी, ठीक है? जिसके साथ थी अल्लाह ताला ने उसको अपना कलीम बनाया, जो बात ही नहीं कर सकते थे, राइट? जो बात ही नहीं कर सकते थे अल्लाह ताला ने उनको अपना कलीम बनाया, जो सारे के सारे बात कर सकते थे उनको किसी को कलीम नहीं बनाया, ठीक है ना? तो इसमें दो बातें हैं. एक तो ये है कि अगर हमें किसी में कोई फिजिकल फॉल्ट वगैरह नजर आए ना, फिजिकल फॉल्ट उसको कहते हैं, ठीक है, तो हम कभी भी वी शुडंट लुक डाउन अपॉन देम. हम कभी भी उनके बारे में ना कोई बुरा जुमला ना कहें, कोई बुरी बात ना कहें, हत्ता कि बुरा सोचे भी नहीं उनके उनके बारे में. इसको तो चलना भी नहीं आता, इसको तो बात भी करनी नहीं आती, इसको तो अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, इसको तो ये नहीं आता, इसको ये तो ये नहीं कर सकता, वो तो नहीं कर सकता, है ना? आपको क्या पता कि आपको वो चीज बड़ी अच्छी आती है लेकिन अल्लाह ताला आपको कबूल ही ना करें, है ना? अल्लाह ताला आपको रद्द कर दें, आपको रिजेक्ट कर दें, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये सलाहियत. यू कैन स्पीक, है बड़ा अच्छा आपको बोलना आता है, जहन्नुम में जाओ, मुझे तुम्हारा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना? तुम्हें बड़ी अकल की बातें करनी आती है, बड़ा तुम्हारे पास अकल है, बड़ा तुम्हारे पास इल्म है, बड़ा तुम्हारे पास जो है वो खूबसूरती है, है ना? बड़े खूबसूरत हो, जहन्नुम में जाओ. अबू लहब खूबसूरत नहीं था? अबू लहब इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि उस जमाने के लोग उसकी और वो उम्मे के अबू जमील और उम्मे जमील, उसकी बीवी भी बड़ी खूबसूरत थी. कितनी खूबसूरत थी, उम्मे जमील उसको कहते थे, उसकी ब्यूटी की वजह से दोनों के दोनों जहन्नुम, दोनों के दोनों, राइट? तो खूबसूरती का क्या करेंगे हम, राइट? उसी तरह बात करने का क्या करेंगे, ठीक है? तो नेवर एवर इवन थिंक लाइक दैट. बोलना तो दूर की बात कि किसी को आप बोल रहे हो कि तुम्हें तो बोलना नहीं आता, तुम्हें तो ये करना नहीं आता, तो तुम्हें वो करना नहीं आता, अल्लाह ताला उसको पसंद कर लें, उसको कबूल कर लें और आपको मुस्तरद कर दें, आपको रिजेक्ट कर दें. और अगर आप इस तरीके से सोचेंगे किसी के बारे में ना, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अल्लाह ताला आपको रिजेक्ट कर दें. मैंने इस बंदे को ऐसा बनाया है, तुम उसके ऊपर इतराज कर रहे हो. बेसिकली क्या हो रहा होता है, हम उस बंदे पे एतराज नहीं कर रहे होते बल्कि हम अल्लाह पे एतराज कर रहे होते. क्या कर रहे होते हैं हम? अल्लाह पर एतराज कर रहे होते हैं कि अल्लाह ने इसको ठीक नहीं बनाया. भाई अल्लाह की प्रॉब्लम हुई ना फिर तो, ये कि अल्लाह ने इसको ठीक नहीं बनाया. तो हम उस बंदे के ऊपर एतराज नहीं कर रहे कि इसको ये करना नहीं आता, इसको वो करना नहीं आता, हम अल्लाह पर एतराज कर रहे हैं. सुन लिया सब? ये बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इस तरह की, तो मुझे पता लगता रहता है किस बच्चे ने किस बच्चे को क्या कहा, ठीक है? तो समझ ले मैं आपसे बात कर, एवरी वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है? कि इस किस्म की कभी भी नहीं है भाई, हमें जहन्नुम में नहीं जाना है ना? इस तरह का एक जुमला कह करके क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा? जहन्नुम में चले जाएंगे अगर, तो फिर तो सब कुछ खत्म ना, दोबारा नेक्स्ट लाइफ लेकर आएंगे फिर? नहीं नहीं सॉरी ये गलती हो गई, जब मैं दोबारा से नई लाइफ में ऐसा काम नहीं करूंगा, राइट? वी ओनली हैव वन लाइफ, एक ही मौका है, उस एक मौके को इस बेवकूफी की बात करके खत्म ना कर दें, सही है? बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत एहतियात करें. और दूसरी बात ये है इसके अंदर हमारे लिए कि अगर हमारे अंदर कोई ऐसी फॉल्ट, राइट, अगर खुद हमारे अंदर हो सकता है, किसी के अंदर किसी किस्म की होता है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ फिजिकल फॉल्ट होती है, हर एक के अंदर होती है, किसी में नजर आ रही होती है, किसी में नजर नहीं आ रही होती, लेकिन होती है किसी ना किसी में कुछ ना, यानी हर एक में कुछ ना कुछ फॉल्ट होती है. तो कभी ये ना सोचें कि जी चूंकि मेरे अंदर ये फिजिकल फॉल्ट है तो अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना? अब तो जी मैं अल्लाह ताला को खुश नहीं कर सकता, मैं तो जन्नत नहीं कमा सकता, मैं तो नेक अमाल नहीं कर सकता, मैं तो फला नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, है ना? नहीं, इसके लिए फिजिकल एबिलिटीज की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो अल्लाह ताला को नेकी के जरिए से, नेकी आपके दिल की नीयत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना? आप अल्लाह ताला को खुश करेंगे अपनी नीयत के जरिए से, अपने इंटेंशंस के जरिए से, ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा आमाल करें खुश करने के लिए, ठीक है? कि जी अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता किसी को अल्लाह ताला ने बगैर टांगों के पैदा किया, ठीक है, किसी किसी लड़के को अल्लाह ताला ने टांगे नहीं दी, या पैदा तो वो टांगों के साथ हुआ था लेकिन एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांगें टूट गई, खत्म हो गई, ठीक है ना। अब ये लड़का जो है वो मस्जिद जा ही नहीं सकता, ठीक है ना, ही वोंट बी एबल टू गो टू द मस्जिद। और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब 27 टाइम्स होता है, ठीक है ना। अब ये लंगड़ा बच्चा जिसकी टांगे अब नहीं है, ये लड़का कभी मस्जिद नहीं जा सकता, तो ये कितने सवाब से महरूम हो रहा है ना। अब ये सोचे कि ओ मैं तो सवाब नहीं हासिल कर सकता मस्जिद का, तो मैं तो बस अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा बन ही नहीं सकता क्योंकि मेरी तो टांगे ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। आप बन सकते हैं, इसके लिए आपको मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से मस्जिद नहीं जा सकते हैं, आप अल्लाह ताला को घर में रह करके राजी कर सकते हैं, आप अल्लाह ताला के दोस्त घर में रह करके बन सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए दिल की नीयत की जरूरत होती है और अच्छी, बस जो आप कर सकते हैं वो आप करें, ठीक है ना। तो ना तो दूसरों को बुरा समझें कि जी उसके अंदर ये नहीं, उसके अंदर वो नहीं, और ना अपने आप को कभी बुरा समझें कि जी मेरे पास तो ये फिजिकल एबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से मैं तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना कलीम बनाया, लेकिन कैसा कलीम बनाया जो कि बात भी नहीं कर सकते थे अच्छी तरीके, है ना। अच्छा, लेकिन उलमा ने जो कॉज लिखा है ना, एक मिनट, यहाँ पे किसी ने कुछ लिखा है, मे बी अल्लाह डिसाइडेड ओनली मूसा अलैहिस्सलाम शुड से नॉट एनी अदर प्रॉफिट। अल्लाह के डिसीजन तो हर चीज के पीछे होता है ना, तो वो तो हमारे सवाल का जवाब ना हो। की जुबान की लुकनत, हाँ इन्होंने लिखा भी था माशाल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान की लुकनत। अच्छा, तो अब जो है वो असल डिस्कशन की तरफ आते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह, ये नबी अलैहिस्सलाम से ये सारी बातचीत करी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं करी। उसकी वजह उलमा ने ये लिखी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे ना, ये थे अल्लाह ताला के खलील, ठीक है ना, फ्रेंड ऑफ अल्लाह, ठीक है। और मूसा अलैहिस्सलाम थे अल्लाह ताला के कलीम, जो अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। फ्रेंड में और कलीम में एक फर्क होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये उसकी वही स्टोरी है ना कि वो जो आग का अंगारा रखा था फिरौन ने सामने चेक करने के लिए कि वाकई मेरा दुश्मन है कि दुश्मन नहीं है, तो ताकि जी उनकी वो जो जो उसकी जो बीवी थी आसिया, उन्होंने कहा था कि इस इनके सामने एक आग का कोयला रखो, जैसे अंगारा कोयला होता है, ठीक है, और एक जो है वो कोई ज्वेल रखो, बड़ा चमकता हुआ ना, कोई सोने के टुकड़ा रखो, तो नहीं सोने का टुकड़ा रख दो जो कि चमकता ना हो, लेकिन आग का अंगारा जो है वो चमकता होगा। तो ये तो छोटा सा बच्चा है, ये बच्चा क्या करेगा कि ये जो है ना वो आग के अंगारे को पकड़ने की कोशिश करेगा। नहीं यार, क्या था कि ये
नबी ये अगर दुश्मन हुआ तो ये अच्छी चीज कर जाएगा।
नॉर्मल बच्चा होगा तो ये आग को पकड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि आग जो है वो बहुत चमक रही है, और बच्चा जो होता है ना वो चमकने वाली चीज की तरफ जाता है, ठीक है। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि इसने जो तुम्हें थप्पड़ मारा है ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था ना फिरौन को, उसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया था कि अच्छा ये तो मेरा दुश्मन है, मैं उसको मार दूंगा। तो आसिया ने कहा था कि नहीं नहीं ये तो बच्चा है, इसने तो बस ऐसे बचपन में तुम्हें थप्पड़ मार दिया, इसको क्या पता कि तुम कौन हो, ठीक है। तो तुम इसका टेस्ट कर लो कि सामने एक आग का अंगारा रख दो और एक जो है वो कुछ सोने वोने की चीज रख दो, ठीक है, जो कि ज्यादा ग्लो नहीं करती, आग का अंगारा जो है बहुत चमकता है, दमकता है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा बच्चा है ना, ये जो है ये तो आग के अंगारे को पकड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि बच्चा है, लेकिन अगर ये अल्लाह का नबी है तो फिर ये आग के अंगारे को नहीं पकड़ेगा बल्कि ये उस सोने वाली चीज को पकड़ेगा क्योंकि नबी के अंदर अकल होती है, ठीक है ना, तो ये सोने को पकड़ेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब दोनों चीजें रखी गई थी तो मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे, अकलमंद थे, इवन उस वक्त भी अकलमंद थे इतने छोटे से, तो उन्होंने वही सोने वाली चीज की तरफ हाथ बढ़ाया, ठीक है, सोने की चीज की तरफ। लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, उन्होंने इनका हाथ पकड़ के आग के अंगारे की तरफ कर दिया, इन्होंने आग के अंगारे को पकड़ा किसी तरीके से, ठीक है ना, या तो उसका कोई कोल्ड पार्ट होगा, होता है ना कभी कोई कोयला होता है, एक तरफ से वो जल रहा होता है, एक तरफ से वो ठंडा होता है, तो उन्होंने ठंडे हाथ की तरफ से पकड़ लिया होगा और उसको उठा करके फौरन बच्चे की तरह अपने मुंह में डालने की कोशिश करी, तो उसकी जो आग थी ना उससे इनकी जुबान जल गई, जब जुबान जल गई तो फिर उसके बाद से वो लुकना लुकना तो उनकी जुबान के अंदर शुरू हो गई। जब उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ करी ना, रब्बिश्राहली सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उकदतम मिन लिसानी, मेरी जुबान के अंदर जो ये लुकनत है आप इसको भी दूर कर दीजिए, ठीक है, तो उस वक्त भी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की लुकनत पूरी दूर नहीं करी, थोड़ी सी दूर करी, ठीक है ना। यानी इवन आफ्टर दैट मूसा अलैहिस्सलाम कंटिन्यू टू स्टटर, ठीक है, लेकिन कमी हो गई, इतना अल्लाह ताला ने ठीक कर दिया कि वो बस फिरौन से बस बात करने के काबिल, ठीक है ना, फिरौन को बताना कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो ये नहीं करो, बस थोड़े से बातचीत करने के काबिल हो गए, कंप्लीटली लुकनत उस वक्त भी अल्लाह ताला ने दूर नहीं करी, ठीक है। अच्छा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खलील थे और मूसा अलैहिस्सलाम कलीम थे। तो उलमा ने ये लिखा है कि जो खलील होता है ना, खलील दोस्त, ठीक है, वो दोस्त जो होता है ना वो अपने दोस्त से बस हर हाल में राजी होता है, खुश होता है, ठीक है। अल्लाह के दोस्त है ना, तो अल्लाह ताला ने 50 नमाजें दी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम डिड नॉट इवन थिंक अच्छा 50 नमाजों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ जो है वो उसके अंदर कमी बेशी करने की जरूरत है, राइट, वो अल्लाह ताला के दोस्त है। तो दोस्त के अंदर जो होता है ना वो, यानी उसको कहते हैं एक सबमिशन होती है, ठीक है, मकाम नियाज उलमा ने लिखा है। नियाज का मतलब कि जैसे आप जब आपस में जैसे होता है ना, एक ही एज के लोग फ्रेंड्स होते हैं, एक ही एज के लोग होते हैं, तो उसमें तो फिर वो हंसी मजाक भी करते हैं और जरा चिल भी करते हैं कुछ कभी कुछ, लेकिन अगर आपकी दोस्ती हो अपने से किसी बड़े के साथ, ठीक है ना, दोस्ती हो किसी बड़े के साथ, तो अब ये दोस्ती जो होती है ना इसके अंदर आप बड़े की हर बात को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो आप उसके दोस्त हैं, ठीक है ना, आप उसके साथ नखरे नहीं करते कि नहीं मुझे ये आपने क्यों कहा, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये आपने ये सब नहीं करते, बल्कि हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह ताला के फ्रेंड थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 50 नमाजों के अंदर ना किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, बस ठीक है 50 नमाज है बस सही है, बिकॉज दोस्त ने कही, अब दोस्त जो भी कह दे हम तैयार हैं उसके लिए, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं कहा बिकॉज ही डिड नॉट सी एनी प्रॉब्लम विद इट, ठीक है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम क्या थे, मूसा अलैहिस्सलाम थे कलीम, कलीम का मतलब जो कि बातचीत करता है, ठीक है, बातचीत करने वाला जो होता है ना, ठीक है, उसके अंदर एक तरह का, मैंने वर्ड भी शायद लिखा था उसके अंदर, अंग्रेजी में क्या वर्ड होगा, उर्दू में कहते हैं उसको नाज, नाज और नखरे, सुने नखरे तो समझते हैं, ठीक है, नखरे समझते हैं सही, और नाज जो है वो उसी के लिए थोड़ा सा प्रॉपर वर्ड है, नाज और नखरे, ठीक है। ये नाज और नखरे जिसमें होते हैं ना, तो वो फिर ना फिर उसको नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, अगरचे के अगर वो मोहब्बत करने वाला है तो उसके नाज और नखरे भी जो है ना वो भी मोहब्बत के साथ ही होंगे, ठीक है ना, बेअदबी के साथ नहीं होंगे बल्कि मोहब्बत के साथ अदब के साथ होंगे, लेकिन होंगे। इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल जो है वो बच्चा, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही फरमाया था, बच्चा, ठीक है, बच्चे और पेरेंट का जो ताल्लुक होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, नाज और नखरों वाला, ठीक है ना, हर वक्त कुछ ना कुछ, मुझे ये चाहिए मुझे वो नहीं चाहिए, आपने ये क्यों दे दिया, इसकी बजाय मुझे कुछ और मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं है, यही करते रहते हैं बस, ठीक है। तो मोहब्बत तो होती है अब्बू के साथ, है ना, बेटे को अब्बू के साथ बहुत मोहब्बत होती है, अम्मी के साथ भी बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन अम्मी की बातों के अंदर ये ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, है ना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों मिला, ये ऐसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोहब्बत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत बदतमीजी कर रहा है, हाँ अगर वो जरा बदतमीजी की तरफ चला जाए वो फिर उसके बाद डांट भी पड़ती है, ठीक है, लेकिन ये एक नॉर्मल सी बात है ना। उसी तरह से उलमा ने लिखा है कि जैसे बीवी होती है ना, बीवी को भी जब शौहर के साथ मोहब्बत होती है तो उसमें भी थोड़ा सा नाज और नखरे वाला ताल्लुक होता है ना, उसमें भी वो जरा बातें करती है, ये नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, लेकिन वो मोहब्बत के साथ हो रहा होता है, ठीक है। तो उलमा ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, ये अल्लाह ताला के कलीम थे, तो इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक था ना, ये नियाज वाला ताल्लुक नहीं था, सबमिशन वाला कंप्लीट ऐसा नहीं था, बल्कि उसके अंदर थोड़ा सा नाज भी दाखिल, ठीक है ना, क्योंकि बातचीत करने वाले के अंदर नाज आ जाता है। तो इस वजह से ना फिर उन्होंने ये सारी बातें करी कि जी 50 नमाजें क्यों हैं और कम करवा लो, और तो ये एक रीजन उलमा ने लिखी है। ठीक है, अब आपको समझ में आई कि नहीं आई? बच्चे वाली मिसाल से समझ आ गई कि बच्चे और माँ बाप का ताल्लुक ऐसा होता है ना, उस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला का ताल्लुक था, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला का ताल्लुक जो है वो कंप्लीट सबमिशन का, कंप्लीट अल्लाह ताला के ऊपर हर चीज छोड़ दी थी उन्होंने। ठीक है ना, वो आग में डाल दो कोई बात, आग में डाल दो कोई असली कोई है ना, अल्लाह ताला बचाना चाहेंगे तो बचानेंगे, नहीं बचाना चाहेंगे तो नहीं बचाएंगे, कोई मसला नहीं। इस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला था। अच्छा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई बात नहीं करी। अच्छा, इसके बाद जो है ना बड़ा जबरदस्त एक टॉपिक लिखा है, नाज़ो नखरे यानी एटीट्यूड। हाँ, लेकिन विद अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, नाज़ो नखरे यानी एटीट्यूड से जो आपने लिखा है ना, तो ये एटीट्यूड विद अ पॉजिटिव सेंस, ये मोहब्बत वाला एटीट्यूड था। ठीक है ना, लव्स एटीट्यूड जब हम इंग्लिश में यूज करते हैं ना तो वो यूजली हम नेगेटिवली यूज करते हैं ना, एटीट्यूड दिखा रहा है भाई, राइट, वो नेगेटिवली इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिवली उसको इस्तेमाल नहीं करते बल्कि पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत भी शामिल थी और बहुत शदीद मोहब्बत शामिल थी, ऐसी कोई आम मोहब्बत नहीं करते थे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना नमाज की बारी आई कि एग्जैक्टली नमाज क्या है जो कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को तोहफे में दी। ठीक है ना, अब इसके बारे में उलमा ने बड़ी जबरदस्त बातें लिखी हैं कि देखें नमाज के अंदर जो मेनली चार पिलर्स हैं, चार रुकन हैं, चार अमल हैं, फोर, वो क्या है नमाज के अंदर फोर मेन अमल, इंडल्जेंस विद किड्स, चार अमल नमाज के, एक सजदा एक अमल है, रुकू आयाम नहीं, यानी एक्शंस में अगर आप देखें ना अमल, मुझे एक्शंस भी बोल देना चाहिए, चार एक्शंस हैं। ठीक है ना, कयाम हो गया, रुकू हो गया, सजदा हो गया और कादा, कादा कहते हैं बैठने को, अत्तयात कादे की हालत में आप कर लेते हैं ना। ठीक है, सूरह फातिहा आप कयाम की हालत में, जो भी सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, दूसरी सूरतें पढ़ रहे हैं, सना पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, इस सब का सब आप कयाम की हालत में कर रहे हैं। ठीक है ना, रुकू की हालत में आप सुभान रब्बी अल अज़ीम पढ़ रहे हैं या कोई दूसरी दुआ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, सजदे की हालत में आप सुभान रब्बी अल आला पढ़ रहे हैं और दूसरी कोई दुआ पढ़ना चाहें वगैरह। ठीक है, जो नफिल नमाजों के अंदर दूसरी दुआ भी पढ़ सकते हैं अरबी जुबान की। और फिर चौथा रुकन जो है वो बैठना, कादा इसको कहते हैं। ठीक है, जलसा भी उसको कहते हैं बैठने को, सजदा रुकू कयाम एंड तशहुद। तशहुद की जगह जलसा या कादे का लफ्ज इस्तेमाल करें, क्योंकि कादे के अंदर आप तशहुद पढ़ रहे होते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं, दुआ पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो ये चार बेसिक रुकन और आमाल है नमाज के। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये जो चार एक्शंस है ना, ये एक्शंस इनमें हम करते क्या है, हम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं, तस्बीह करते हैं, ठीक है, कुरान की आयात तिलावत करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अल्लाह ताला ने आसमानों में फरिश्ते बनाए, फरिश्तों के मुख्तलिफ काम लगाए। ठीक है ना, कुछ फरिश्ते जो है वो उनको बारिश बरसाने के लिए लगाया, कुछ फरिश्तों को इंसानों की जान निकालने के लिए काम लगाया। ठीक है, लेकिन बहुत सारे फरिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं इबादत करने के। ठीक है, यानी जो इबादत वाले एक्शंस होते हैं ना, वो वाली इबादत करने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे फरिश्ते बनाए। तो इन फरिश्तों में ना बहुत सारे फरिश्ते अल्लाह ताला ने सिर्फ ऐसे बनाए हैं जो कि खड़े हुए अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो भी तस्बीह बयान करते हैं हमें पता भी नहीं, वो खड़े हैं और खड़े खड़े जो है वो बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। बहुत सारे फरिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए आसमानों में जो कि रुकू की हालत में, हर वक्त रुकू की हालत में रहते और उसी हालत में अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते रहते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे फरिश्ते बनाए जो कि हर वक्त सजदे की हालत में, हर वक्त सजदे की हालत और हर वक्त यही करते रहते हैं सजदे की हालत में तस्बीह। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बैठे हुए तस्बीह करते, जैसे हम बैठ करके कभी तस्बीह वगैरह करते हैं ना, वो फरिश्ते बैठ करके तस्बीह करते रहते हैं। ठीक है ना, जो फरिश्ते कयाम में अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद और तहलील करते हैं वो रुकू नहीं करते, वो सजदा नहीं करते, वो कादा नहीं करते, वो सिर्फ खड़े हुए करते रहते, और जो रुकू में करते हैं वो रुकू में ही रहते हैं, वो सजदे में, क्याम में, कादे में नहीं रहते, वो सिर्फ रुकू के अंदर ही रहते। और कुछ जो है वो जो सजदे में, वो सिर्फ सजदे में रहते हैं, वो रुकू, क्याम, कादा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो फरिश्तों की इबादत कैसी है, जिसको जैसे बनाया वो वैसे ही अल्लाह ताला की बात कर, ही कैन नॉट चेंज हिज पोस्चर, अपनी पोजीशन अपना चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसानों को जो नमाज अदा फरमाई, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की उम्मतियों को जो नमाज अदा फरमाई ना, इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरिश्तों की इन चारों शक्लों को, इनकी इबादत की चारों शक्लों को जमा कर दिया, ठीक है ना। पिछली उम्मतों के पास जो नमाजें थी उनमें भी चारों शक्लें नहीं, ये जो रुकू है ना, रुकू बनी इसराइल वाले जो नमाज पढ़ा करते थे उसमें रुकू नहीं है, ठीक है, उसमें रुकू नहीं है। वो आपको बताया था ना, वेलिंग वॉल, क्या दीवारें गिरिया, दीवारें गिरिया के ऊपर इबादत करते हैं जाकर, कैसे करते हैं? खड़े हुए ऐसे ऐसे देखते रहते, सर से यूं करते रहते, रुकू नहीं है उनके पास, ठीक है ना। या तो ये कि अच्छा क्रिश्चियन जो है या तो हिम्स वगैरह पढ़ते रहते हैं अपनी, उनकी इबादत जो होती है ना वो राइम्स पढ़ते रहते हैं, हिम्स पढ़ते रहते हैं, ठीक है, या ये कि वो सजदे में चले जाएंगे, ठीक है। तो या तो बैठे बैठे कुछ पढ़ते रहेंगे, या ये कि वो सजदे में चले जाएंगे, उनके पास भी रुकू नहीं है, ठीक है। और क्याम की हालत में वैसे खड़े होकर के बाकायदा इबादत करना जो यहूदियों के पास है, वो क्रिश्चियंस के पास नहीं, क्रिश्चियंस या तो सजदे में चले जाएंगे या फिर ये कि बैठ करके जो पढ़ते रहेंगे जो भी अपना, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम को जो नमाज अता फरमाई उसके अंदर अल्लाह ताला ने इन चारों शक्लों को फरिश्तों की इबादत की जमा कर दिया, ठीक है ना। अब हम सब हालत के अंदर अल्लाह ताला की तस्वीर बयान करते हैं। अच्छा, एक और नुक्ता नमाज के बारे में उलमा ने लिखा कि कुरान मजीद में एक आयत है, वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने बनाई सिवाय इसके कि वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती रहती, हर वक्त तस्बीह बयान करती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो चीजें बनाई ये हमने आपको पहले बताई हैं, उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो तीन कैटेगरीज कौन सी, पहले तो उन तीन के बारे में बताएं। जो अल्लाह ताला की मखलूक है उनकी तीन किस्में हैं, क्या कहते हैं उनको, इंसान, हैवान, जिन, अच्छा, और फरिश्ते, और बताएं दुनिया में जो 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 चीजें हैं, इंसान जो लिखा है और दरख्त वगैरह, ठीक है, जो पौधे इन्होंने कहा, आपने कहा दरख्त, मोहम्मद आपको याद है वो लिख करके जो आपको बताएंगे, नहीं वो वाले मोहम्मद है ना, उनको भी बताएंगे, कुछ दिन हो गए उस बात। नबातात, नबादात नहीं, नबातात, जमादात, माशाल्लाह, ठीक है, जमादात, नबातात, और तीसरी हैवानात, हैवानात, ठीक है, एनिमल किंगडम जिसको कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रख रखने, और जिनके पास लिखने की चीजें हैं वो लिखने, और जिनके पास नहीं है तो वो नेक्स्ट टाइम लिखने की चीज लेकर के, ठीक है। तो जमादात, नबातात, बेशक रोमन में लिखने, अगर उर्दू प्रॉपर आपको लिखने भी नहीं आती, जमादात, नबातात, हैवानात, ठीक है, ये तीन अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर मखलूक की टाइप्स बनाई। अब आसान कर दिया, आप तो बता दें कि जमादात क्या चीज होती है, इंसान और जिन जमादात होते हैं, इंसेक्ट्स, जमादात, कोई बताएगा यहाँ पे जमादात किनको कहते हैं? ये जो वर्ड है ना जमादात, इस वर्ड से ही पता चल जाता है ये जमादात किसको कहते हैं। जमी हुई चीज है, फ्रोजन, ठीक है, फ्रोजन का मतलब ये नहीं कि वो आइस फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब बस जम, जहां पर है बस वहीं पर जमी हुई, जमा हुआ समझते हैं उर्दू में, जमी हुई, जमी हुई का मतलब ये होता है कि आप वो हिल नहीं सकती कहीं भी, वो जमी हुई एक जगह, ठीक है। तो जमादात जो है वो जमी हुई चीजों को कहते हैं, क्योंकि अपनी जगह पर जमी हुई है, वो ना ऊपर जा सकती है ना नीचे जा सकती है, ना राइट जा सकती है ना लेफ्ट जा सकती है, ना ऊपर आगे ना पीछे, जमी हुई। तो अभी कौन सी चीजें हो गई जमी हुई चीज, इंसान हम तो नहीं जम सकते हैं, फरिश्ते जमी हुई है, फरिश्ते जमी हुई है, इज़राइल ये सारे जमे, पहाड़ पत्थर है ना, पत्थर को आप रख दें, आप पत्थर मूव कर सकता है कहीं, जब तक कि आप उसको मूव ना करें वो तो नहीं मूव कर सकता ना, ठीक है। माउंटेन्स हैं वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो पत्थर ही है, बेसिकली बड़ा सा एक पत्थर होता है जो माउंटेन कहलाता है। नॉन लिविंग थिंग्स, हाँ नॉन लिविंग थिंग्स उसको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और पानी के बारे में क्या ख्याल, वाटर, वाटर जो है वो जमादात में आएगा, क्यों वाटर क्या भागता रहता है, वाटर को क्या चीज हिलाती है, हवा हिलाती है, या वाटर को ग्रेविटेशनल पुल हिलाता है, ठीक है ना। जब आप वाटर को यहाँ डाल दें तो वाटर इधर ही, उसका ड्रॉप देखा नहीं, ड्रॉप पड़ा रहता है ऐसे करके है? वो खुद से तो नहीं कहीं फ्लो होना शुरू हो जाता, आप टेबल को यूं करके उठाएंगे तब वो फ्लो होगा ना, तो वो क्यों फ्लो होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल उसको खींच रहा है, इस वजह से वो फ्लो हो रहा है, खुद से तो नहीं फ्लो हो रहा, राइट। तो वाटर भी जमादात में है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इस तरह की जो कि खुद से मूव नहीं हो सकती, ये सब जमादात कहलाती, जमादात जमी हुई चीज है, ठीक है ना। इन्हीं को एक और लफ्ज कह सकते हैं बैठी हुई चीज, है ना, दे आर ऑलवेज सिटिंग डाउन, यहां पर है उधर बैठी हुई, ठीक है। दूसरी चीज हो गई नबातात, जिनके बारे में इन्होंने लिखा थिंग्स दैट ग्रो बट aren't एनिमल्स लाइक ट्रीज प्लांट्स। नबातात का लफ्ज जो है वो नबा से निकला, नबा यंबू, नबा, नबा मींस टू ग्रो, ग्रो का मतलब ये होता है कि या तो आप ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं या आप नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं, और ये कौन सी चीज होती है जो ऊपर की तरफ ग्रो नीचे की तरफ ग्रो करती है, प्लांट्स। ना तो ये प्लांट्स अपनी जगह से, कभी प्लांट को चलते हुए देखा है, वॉकिंग प्लांट कभी देखा है ना, प्लांट जो है फ्लाइंग प्लांट देखा कभी, प्लांट ना फ्लाई कर सकता है ना वॉक कर सकता है, प्लांट ग्रो कर सकता है, बस जहां पर है वहीं से ऊपर ग्रो करेगा और वहीं से नीचे ग्रो करेगा, राइट, और मूव नहीं कर सकता। इस वजह से नबातात से मुराद प्लांट किंगडम होती है, ठीक है। लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं करते, वो यूं करके बंद हो जाते हैं भाई, वो तो फूल भी जो है वो यूं करके फूलता है, पिचर जो है वो भी यूं करके बंद हो जाता है और वगैरह बहुत सारी, लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। सूरह नबा के अंदर नहीं, वो ग्रो वाला नहीं है, वो है खबर वाला नबा, खबर न्यूज, अम्मा यतसाअलू अनिन नबअल अज़ीम, नबा से मुराद वहां पे खबर। तो ये जो ग्रो करना है ना, ये इसको नबातात कहते हैं, बिकॉज दे ग्रो अपवर्ड्स और एंड डाउन, इनकी रूट्स नीचे ग्रो करती हैं, इनकी स्टेम्स वगैरह ऊपर ग्रो करती हैं। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो है हैवानात, हाँ जानवर, हैवान, ठीक है। वैसे जो ये नॉन मुस्लिम्स है ना, वो इंसान को भी हैवानात में ही काउंट करते, लेकिन बस फर्क कहते हैं कि इंसान और दूसरे हैवानात में फर्क ये है कि इंसान जो है वो नातिक है, वो बोल सकता है, किसी लैंग्वेज को स्पेल आउट कर सकता है, दूसरे एनिमल जो है ना वो लैंग्वेज को बोल नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसको हैवान नातिक कहते हैं, नातिक मतलब स्पीकिंग, ठीक है। तो हैवानात में फिर बाकी सारे आ गए ना, इंसान भी हैवानात में आप शामिल कर लेंगे, इवन जिन्नों को भी कर ही लेंगे इस चीज तरह से, वो भी हैवानात ही किस्म है, लेकिन एनिमल किंगडम सारी की सारी हैवानात में आ गए, ठीक है। तो ये तीन याद रखें, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जमादात, नबातात, हैवानात, ठीक है। अब नमाज का इससे क्या ताल्लुक, वो उलमा ने लिखा कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि हर चीज अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती रहती है, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला की तस्बीह हैवानात भी बयान करते रहते हैं, नबातात भी बयान करते रहते हैं और जमादात भी बयान करते रहते हैं, ठीक है ना, सब के सब। जी नहीं फरिश्ते बिल्कुल ये गलत, वो तो फिजिकल है ही नहीं ना, हम यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड की बात कर, मटेरियल फिजिकल वर्ल्ड, फरिश्ते स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है, तो इस वजह से उनको में शामिल नहीं करेंगे। हाँ जिन फिजिकल वर्ल्ड में किससे बनाए, जिन आग, आग क्या है फिजिकल वर्ल्ड, इंसान नजर आपको कोई चीज नहीं आती तो समझ आइएगा थोड़ी कि वो फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, गैस नजर आती है, हवा नजर आती नहीं नजर आ रही, हवा स्पिरिचुअल वर्ल्ड की थोड़ी है, हवा फिजिकल वर्ल्ड। अच्छा इंसान एंड जंतु कम अंडर दिस, हाँ वही बोल रहे हैं कि उसको आप हैवानात में शामिल कर लें, इंसान भी हैवानात में ही शामिल कर लिए जाते हैं, खैर वो एक अलग डिस्कशन है। अच्छा तो हर चीज अल्लाह ताला की तस्वीर बयान कर रही है, तो उलमा ने बड़ी मजे की बात लिखी कि ये जो दरख्त होते हैं ना, दरख्त, दरख्त जो है ये हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है, ज्यादातर प्लांट्स चाहे उनकी स्टेम पतली ही क्यों ना हो वो भी खड़ी रहती, जो खड़ी नहीं हो सकती उनके साथ एक डंडी लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बाहर भी डंडा लगा देते हैं ताकि वो खड़ी हो जाए, ठीक है ना, इवन जो जो वाइन्स होती हैं, जो बेल होती है ना, बेल को भी किसी तरीके से खड़ा करने की कोशिश करते हैं, दीवार पे चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये जो प्लांट किंगडम है ना ये खड़ी रहती है, ज्यादातर इनमें खड़े रहते हैं, बाकी वाइन्स वगैरह जो थोड़ा सा लेटी वेटी रहती है तो उनको दूसरे इसमें डाल दीजिएगा। तो इनकी जो तस्बीह है, ये अल्लाह ताला की तस्बीह तो कर रहे हैं ना, इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, अल्लाह की तस्बीह तो कर रहे हैं ना, लेकिन किस शक्ल में कर रहे हैं, कयाम की हालत, राइट, ये कयाम की हालत में और लगे हुए अल्लाह ताला की तस्बीह करते रहते हैं, करते रहते, करते रहते, ठीक है। अच्छा रुकू की हालत में कौन तस्बीह करते हैं, रुकू की हालत क्या होती है, जब हम रुकू की हालत में जाते हैं पहले तो उसको पिक्चर करें ना, जब हम रुकू की हालत में जाते हैं तो हमारी कमर कैसी होती है, हमारी कमर फ्लैट हो जाती है जानवर जैसी, हमारा मुंह किधर, सर किधर होता है, सर हमारा कमर के साथ होता है, ठीक है ना, और हमारी टांग जो होती है नीचे होती है, तो ये फिर जाहिर है सब समझ गए कि ये जो चौपाए होते हैं फोर लेग्ड एनिमल्स हो, ठीक है, तो ये सारे के सारे किस हालत में रहते हैं, ये रुकू की हालत में रहते हैं, इनकी कमर जो होती है फ्लैट होती है, इनका मुंह जो होता है इनकी कमर किस तरफ लगा हुआ होता है, ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की तस्बीह तो बयान कर रहे हैं, चाहे ऊंट हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे घोड़ा हो, गधा हो, जो भी हो, सब के सब ये रुकू की हालत में अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे हैं, ठीक है ना जी। कैंगरू भी आप, हाँ कैंगरू को भी आप रुकू की हालत, बिकॉज वो भी, अब थोड़ा सा फर्क, जैसे ऊंट की भी तो गर्दन थोड़ी स्मूव करके होती है, ठीक है, लेकिन बहरहाल गर्दन के साथ ही उसका मुंह लगा हुआ और वो फोर लेग्ड ही है, झुका हुआ ही, उसको आप खड़ा हुआ नहीं कहेंगे। कैंगरू को भी आप, माशाल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल किया, आप सोचते हैं कैंगरू को आप खड़ा हुआ कहेंगे कि नहीं, उसके जो दो टांगे हैं ना वो तो ऊपर की तरफ से उठी हुई होती है और बाकी दो टांगे जो होती है जमीन पर लगी हुई होती है, ठीक है, तो वो इज समथिंग बिटवीन खड़ी हुई और कयाम और रुकू के बीच की कोई चीज है, क्या क्या फरमा
रहे
हैं, मेरे ब्रेन में सीधे नहीं होते तो आप उसको कयाम में नहीं फिट कर सकते, ठीक है ना, तो जॉइंट्स बहरहाल उसके झुके हुए हैं किसी ना किसी फॉर्म में, स्ट्रेट तो नहीं है ना, तो माशाल्लाह बेंड है, सही क्या कादा में, यानी बैठी हुई हालत में, बैठी हुई हालत में बिल्कुल भी नहीं कहेंगे उसको। तो दूसरी किस्म जो है वो उलमा ने लिखा चौपाए, फोर लेग एनिमल्स और इस तरह के, तो वो सब के सब जो है ना वो रुकू की हालत में अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे हैं, क्योंकि वो तस्बीह के बगैर तो नहीं रह सकते, अल्लाह ताला के हुक्म में करो तो वो करते हैं, वो मना नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं करते, ठीक है, सब करते हैं। अच्छा फिर उसके बाद सजदे की हालत में कौन है, सजदे की हालत, अच्छा सजदे के वही पहले हमने रुकू की हालत को डिफाइन किया ना, डिफाइन किया है कि कमर स्ट्रेट नहीं है बल्कि कमर झुकी हुई है, ये रुकू की हालत कहलाती है, डेफिनेशन है रुकू की हालत की, कि व्हेन यू आर नॉट स्ट्रेट, ठीक है ना, आप बेंट हैं और आपका सर भी जो है ना वो तकरीबन उसी लेवल पर है, इसको रुकू की हालत की डेफिनेशन कहेंगे। सजदे को डिफाइन करें, सजदे की डेफिनेशन क्या है, सजदे की तारीफ क्या है, क्या क्या कहें, मछली, अच्छा ठीक है, हम ये नहीं पूछ रहे कि मछली है कौन है, पहले तो सजदे की हालत को डिफाइन करें जी, अच्छा सजदे की हालत की डेफिनेशन जो है ना वो ये है, सर जमीन के ऊपर, बंदर रुकू नहीं करता। लेकिन बंदर भी जो होता है ना वो भी स्ट्रेट नहीं होता, उसके अंदर आप चिंप नहीं गुरेला को, गुरेला को कह सकते हैं कि वो जरा सा खड़ा होता है, लेकिन वो ऐसे टेढ़ा सा होता है। पता है रुकू की तारीफ क्या है, रुकू की डेफिनेशन क्या है? रुकू की डेफिनेशन बिल्कुल स्ट्रेट होना नहीं है। स्ट्रेट होना तो सुन्नत है, रुकू रुकू करने का सुन्नत तरीका यह है कि आपकी कमर बिल्कुल ऐसी हो, फ्लैट हो, ठीक है ना। लेकिन रुकू की तारीफ क्या है, इन्हिना, इन्हिना का लफ्ज इस्तेमाल होता है। रुकू की तारीफ यह है थोड़ा सा झुक जाए ना ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड रुकू, ठीक है। तो थोड़ा सा भी अगर आप झुक जाए तो उसको रुकू कहते हैं। जब जहाज के अंदर वो आपको खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ने देते तो फिर आप बैठ के नमाज पढ़ते हैं ना, तो रुकू कैसे करते हैं? थोड़ा सा झुक जाते हैं वो रुकू हो जाता है, और सजदे के लिए आप थोड़ा सा और झुक जाते हैं वो सजदा हो जाता है, ठीक है। तो रुकू की डेफिनेशन थोड़ा सा झुक जाना है। अब इसके अंदर थोड़े से झुक जाने के अंदर कैंगरू भी आ गया, इसके अंदर मंकी भी आ गया, और बल्कि चिंपैंजी भी आ गया, और इसके अंदर गोरिल्ला भी आ गया। बच्चों की क्लास से तो इस तरह की बातें करनी पड़ेगी, ठीक। तो सजदे की डेफिनेशन जैसे कि इन्होंने दाऊद ने बताई, बिल्कुल सही फरमाई कि सजदे की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपकी पीठ ऐसे उठ से उठी हुई हो, और फिर वो तो सुन्नत तरीका है सजदे का कि आपके हाथ ऐसे हो और आपकी पीठ ऐसे उठी हुई हो, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन सजदे की जो है ना वो ये है कि सर जमीन पे, जमीन के साथ लगता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सजदा, मुंह सर जमीन, ठीक है। अब ये कौन से हैं, जैसे माशाल्लाह इन्होंने लिखा के snakes are in sajda, reptiles लिखा, reptiles उसको कहते हैं, पूरी reptile kingdom है, ठीक है ना। उसमें snake भी आ गया, उसके अंदर alligator भी आ गया, उसके अंदर crocodile भी आ गया, उसके अंदर cockroach भी आ गया, है ना, उसके अंदर scorpion भी आ गया, उसके अंदर सारे के सारा insect kingdom, ठीक है। चाहे छोटा से छोटा भी हो ना, चूंटी भी, ठीक है, ये सब के सब कैसे होते हैं, ये लेटे रहते हैं, ठीक है ना। और इनका सर जो है या मुंह जो है वो जमीन के साथ लगा रहता है, मुंह उठा अलग से नहीं रहता, अल्लाह के वो कोबरा हो कभी कभी थोड़ा सा अपना मुंह उठा ले, लेकिन बहरहाल जब चलता है तो वो लेट करके ही चलता है। नहीं जी, फ्रॉग, जबरदस्त सवाल, बच्चों के साथ तो फिर ऐसे ही होता है। फ्रॉग को बताएं भाई, फ्रॉग जो है जब लेटा हुआ होता है, जब वो पानी में होता है ना तो वो मछली की तरह से स्विम करता है। तो मछली जो होती है वो फ्लैट ही होती है, वो फिर पानी के अंदर यूं करके नहीं बैठा होता जिस तरह से कि वो जमीन पे बैठा। और जब वो टैडपोल होता है तो टैडपोल वो उसी तरह से होता है जमीन पे, यानी फ्लैट ही होता है। तो उसको भी हम रेप्टाइल किंगडम के अंदर रखें, क्योंकि उसकी एक फॉर्म जो होती है ना वो लेटी फॉर्म ही होती है। बहरहाल तो ये जो है रेप्टाइल्स जो हैं, ये सारे के सारे अल्लाह की तस्वीर बयान करते रहते हैं सजदे की पोजीशन के अंदर। मेक इट सिंपल, ठीक है। मछलियां, हाँ मछलियां भी फिर इसी के अंदर आएंगी, क्योंकि मछलियां भी हमेशा उनका भी यही फॉर्म होती है स्विम करने की वगैरह। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो इबादत अता फरमाई उसके अंदर सारी की सारी जो अल्लाह की मखलूक है ना, चाहे वो फरिश्ते हों स्पिरिचुअल मखलूक, चाहे वो मटीरियल मखलूक हो, उन सब की इबादतों की शक्ल अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता फरमा दी। अच्छा एक फॉर्म तो रह गई सजदे के बाद, कादे वाली। कादे वाली फॉर्म यह है कि आप बैठे हुए, ठीक है ना। तो ये बैठे हुए कौन थे, ये जमादार थे, ठीक है ना। दे डोंट डू नॉट मूव, मतलब बैठे हुए हैं बैठी हुई फॉर्म के अंदर। जैसे आप पहाड़ को अगर देखें ना तो पहाड़ भी जैसी लगे जैसे बैठा हुआ है एक जगह, ठीक है ना। तो चारों फॉर्म जो है उनकी तस्बीह अल्लाह ताला ने नमाज में हमें अता फरमा दी, ठीक है। कछुआ भी लेटे हुए फॉर्म में आएगा, बिल्कुल। अच्छा बस इसकी आखिरी बात करके आज की क्लास खत्म करते हैं कि नमाज में एक और बहुत हिकमत की बात ये बयान करी कि पांच नमाजें क्यों हैं, पांच ही नमाजें हमें क्यों मिली। वो तो पूरा वो तो वाकया है ना कि पांच नमाजें, लेकिन अल्लाह ताला वाइड, अल्लाह ताला ने ये सारा डिफाइन किया ना कि हुआ तो भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी दफा, मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को वापस भेजा चेंज करवाने के लिए, नहीं, कितनी दफा भेजा? 9 टाइम्स भेजा, ठीक है, 9 टाइम, 45, फिर 40, फिर 35, फिर 30, फिर तो 9 टाइम्स भेजा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये किया ना कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 टाइम बोला, फिर नबी अलैहिस्सलाम के दिल में जो है वो आया कि जी अब 9th के बाद 10th टाइम मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो 9th टाइम करके 5 पे रोक दिया ना, तो अल्लाह ताला की हिकमत थी ना कि भाई 5 असल में इनको अता फरमाया, अल्लाह ताला को तो पहले से पता था कि सब कुछ होना है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने 5 क्यों अता फरमाई? उलमा ने इसके ऊपर भी एक पॉइंट लिखा, वो ये कि हम जो नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने में हम करते क्या है, वी कनेक्ट टू अल्लाह, हम अल्लाह ताला से जुड़ते हैं, राइट, अल्लाह ताला से बात करते हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, नमाज के अंदर भी करते हैं, नमाज के फौरन बाद भी करते हैं। तो दिस इज कनेक्टिंग बैक टू अल्लाह, खालिक, क्रिएटर, ठीक है। तो 5 दफा हमें कनेक्ट करने की जरूरत क्यों पेश आती है, या 5 दफा कनेक्ट करने में हिकमत क्या थी, रोजाना 5 दफा कनेक्ट करें, उसकी रीजन क्या है? कनेक्ट के लफ्ज से अगर कोई समझे, सोचे थोड़ा सा जब तक इनकी बात, तो फिर 0 हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन थी कि इस तरह से। I've also read somewhere that all plants are in tasbih too. What we have in the galaxy are in Allah Subhanahu wa Taala's tasbih. All planets are in tasbih and tasbih all the time. Is it true? हाँ, तो planets भी तो अल्लाह ताला की creation है ना, तो overall आप planet को भी कह सकते हैं कि वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है, ठीक है। जैसे जमीन एक planet है, ठीक है, सूरज ये भी एक planet है, star तो कहते हैं लेकिन असल में तो आप प्लैनेट भी कह सकते हैं उसको, लेकिन खैर जो भी है, स्टार है, प्लैनेट है, जो भी है, सब कुछ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहा है, ठीक है। तो वो सब, हर चीज एक एंटिटी भी है। ये एक बड़ी जबरदस्त डिस्कशन है जो अंकल्स की क्लास में एक दफा हुई थी, बहुत जबरदस्त, अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। हर चीज अल्लाह ताला ने एक एक सोल बनाई है हर चीज की, दरियाए नील की एक सोल है, दरियाए नील, द होल रिवर हैज अ सोल, है ना, ओहद पहाड़ की एक सोल है, वन ओहद। उसी तरीके से द प्लैनेट अर्थ की एक सोल है, एक रूह है प्लैनेट अर्थ, ठीक है। खैर ये इनके सवाल की वजह से इन्होंने बात करते हैं। 5 डिफरेंट थिंग्स, 5 डिफरेंट टाइमिंग्स थ्रू आउट द डे। हाँ, 5 डिफरेंट पहर कितने होते हैं? 5 ही होते हैं, सह पहर, 2 पहर, चौथा पहर, पहर तो 8 होते हैं, नहीं तो वो पहर के हिसाब से तो फिर नहीं कहेंगे उसको। अच्छा, कनेक्शन के लव से सोचे ना, 5 दफा अल्लाह ताला से कनेक्ट होते हैं हम नमाज में, उसकी रीजन ये है कि अल्लाह ताला है क्रिएटर, खालिक, ठीक है। खालिक की ऑपोजिट क्या चीज होती है? क्रिएटर की ऑपोजिट क्या चीज होती है? मखलूक, है ना, खालिक मखलूक, क्रिएटर की क्रिएशन, ठीक है। तो हम क्रिएशन से कैसे कनेक्ट होते हैं? Creation से how do we interact with the creation? How do we connect with the creation around us?
Conversation
के जरिए से। अच्छा, that's one way. और बताएं, हम कैसे creation से connect होते? देख करके, ठीक है ना, देख करके भी आप connect होते हैं, आपको पता लगता है कि आप ऐसे बैठे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो। और कैसे connect होते हैं creation? सुन करके कनेक्ट होते हैं, वी हियर द क्रिएशन, राइट। अब बात समझ में आ गई, अब बाकी आप पूरी कर दो। ऑल 5 सेंसेस, ठीक है ना, 5 सेंसेस क्या होती हैं? 5 डिफरेंट सेंसेस, ठीक है, देखना, सुनना, सूंघना, ठीक है ना, स्मेल करना, ठीक है, और चखना, चखना मुंह, मुंह से आप चखते हैं या मुंह से आप बात भी करते हैं, ठीक है ना, तो जुबान बेसिकली। और आखिरी चीज जो होती है, फील करना, टच करना, टच, ठीक है ना, इनको कहते हैं 5 सेंसेस। उर्दू में कहते हैं हवास खमसा, खमसा मीन्स 5 और हवास मीनिंग सेंसेस, ठीक है। तो ये जो फाइव सेंसेस हैं, इन फाइव सेंसेस से हम किससे कनेक्ट हो रहे होते हैं? क्रिएटर से? नहीं, हम क्रिएशन से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने हर सेंस के अगेंस्ट हमें एक चीज अता फरमाई जिसको नमाज कहते हैं, कि जिसके जरिए से हम अल्लाह ताला से कनेक्ट हो। तो काउंटर दैट कनेक्शन विद द क्रिएशन अल्लाह गेव अस वन नमाज, ठीक है ना। तो पांच सेंसेस हैं क्रिएशन से कनेक्ट होने के लिए, तो पांच नमाजें हैं क्रिएटर से कनेक्ट। तो ये एक बात उलमा ने, अल्लाह ताला हमारे उलमा को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें खोल खोल करके हमें समझाई। अगर हम उनके ऊपर सोचें, गौर करें, तो हम अपने रब से फिर कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। हर वक्त अल्लाह ताला से जुड़ करके अल्लाह ताला की याद में, जिक्र के अंदर हमारी जिंदगी गुजर जाए, और यही हमारी जिंदगी का मकसद भी है। अल्लाह ताला हमारी इस क्लास को, हमारे कहने को, सुनने को सबको अपनी रहमत से कबूल फरमाए और उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई अंकल हैं जिन्होंने नमाज ना पढ़ी हो सर, तो नमाज करके नहीं करते।